आपका नाम?
बजरंगी दास।
बजरंगी, बजरंगी दास। आप रहते हैं पहले से, शुरू से आप भी नहीं रहते? शुरू में कौन रहता है? कोई नहीं, पक्का नहीं किसी का। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरणी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरणी। जय हो जय हो जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितई गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर्थ श्री श्रीमदिश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल्ड बॉडीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल्ड बॉडीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल्ड बॉडीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। यहाँ पर श्रृंगार दर्शन का टाइम क्या है, कितने बजे होता है? 7:30 होता है। तो ठीक टाइम पर आज हुआ था ना, 7:30। अच्छा, तो फिर क्लास में देर हो जाती है, 8 बजे से ज़्यादा हो जाता है। 8:07 हुआ ना क्लास शुरू होने में, हो जाता है आज लेट हुआ है? हाँ, तो फिर देर हो जाती है। हाँ, अभी 8:07 पर शुरू हुआ क्लास, तो कितने बजे समाप्त करना है? 9 बजे या 1 घंटा ले लें? 8, 7 से 9, 7 हैं 9, 10 ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 6वां स्कंध अध्याय 4। अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुई है प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या 46। मेरे पीछे बोलिए। तपो मे हृदय ब्रह्म तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सवासुरा। तपो मे हृदय ब्रह्म तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सवासुरा। तपो मे हृदय ब्रह्म तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सवासुरा। बोलिए। वैष्णव देवियाँ
धर्मात्मा
शब्दार्थ बोलिए, तपः मन का नियंत्रण, योग तथा ध्यान जैसी तपस्याएं, मैं मेरा हृदयम हृदय ब्रह्मण हे ब्राह्मण तनहो शरीर विद्या वैदिक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान क्रिया आध्यात्मिक कार्य आकृति ही स्वरूप अंगानी शरीर के अंग कृतवः वैदिक वाङ्मय में उल्लिखित कर्मकांड तथा यज्ञ जाताः पूर्ण किए गए धर्मः कर्मकांड संपन्न करने के लिए धार्मिक सिद्धांत आत्मा मेरी आत्मा असवः प्राणवायु सुराः देवता जो भौतिक जगत के विभिन्न विभागों में मेरे आदेशों को लागू करते हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, हे ब्राह्मण ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है, स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं, पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे श्लोक, आप जानते हैं ये श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? दक्ष प्रजापति से, है ना? दक्ष ये दूसरे दक्ष हैं, ये प्रचेताओं के पुत्र हैं दक्ष। पहले दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो दूसरा जन्म लिया उन्होंने, तो वही उसी नाम से जन्म लिया, उसी नाम से जन्म लिया, लेकिन ये प्रचेताओं के पुत्र हैं, दस पिताओं के पुत्र हैं, एक माता, एक माता और दस पिता हैं, है ना? तो ये दक्ष जो है इनको भगवान जो है शिक्षा दे रहे हैं, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान इनको शिक्षा दे रहे हैं। तो थोड़ा समझिए, श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझिए भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात भगवान ने क्या कहा, तपो में हृदयम, बिल्कुल सरल, तपस्या मेरा हृदय है, और ब्राह्मण हे ब्राह्मण, दक्ष कौन है? ब्राह्मण है, है ना? ब्राह्मण और विशेष रूप से ये कौन से ब्राह्मण है? कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेदों में जो कर्मकांड दिया गया है उसका पालन करने वाले ये ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, और भगवान को प्रसन्न किया है, और भगवान जो है कर्मकांड में भी भगवान अपनी स्थिति बतला रहे हैं, अपने को समझने की विधि बता रहे हैं, कर्मकांड में भगवान को कैसे समझना, तो तपस्या मेरा हृदय है, है ना? जैसे उपासना कांड है, वेदों में उपासना कांड भी है, उपासना कांड के अनुसार बताया जाता है साधवो हृदय में, साधु मेरे हृदय हैं, है ना? तो भगवान का शरीर दूसरे प्रकार का है, उपासना कांड में भगवान का शरीर दूसरे प्रकार का है, और कर्मकांड में भगवान का शरीर दूसरे प्रकार का है। तो कर्मकांड के अनुसार भगवान अपने शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे शरीर को इस प्रकार से समझो, है ना? तो सबसे पहली बात, इसमें छह बातें हैं और क्रम से आप समझिए, क्योंकि ये जो है कक्षा है, ये भागवत की कक्षा है। ये केवल प्रवचन नहीं है कि सुना नहीं सुना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं, ये कक्षा है। कक्षा में लिखाई पढ़ाई है और जो है सब कुछ होती है, और इसमें समझना होता है, समझाना होता है, तो ये कक्षा है, ये है ना, खाली प्रवचन नहीं है। इसमें प्रश्नोत्तर भी होता है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, इसमें चर्चा भी होगी, वार्ता कथा वार्ता भी होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है कक्षा है, ये खाली प्रवचन नहीं है कि भाई कोई सुने ना सुने, कोई समझे ना समझे, कुछ मतलब नहीं है। सुनाने वाला सुनाएगा, सुनने वाले अपना सुने ना सुने, कोई ऐसा नहीं है, कक्षा है ये। कक्षा में मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है एक चर्चा का जो है ये वातावरण है कि हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो श्लोक में पहली बात भगवान ने जो बतलाई, कर्मकांड के अनुसार अपना जो शरीर है भगवान ने बतलाया कि उनके शरीर का अंग हृदय क्या है, तपस्या है, तपस्या हृदय है ना। फिर तनुर्विद्या, शरीर हृदय होता है और फिर शरीर भी होता है, शरीर क्या है, विद्या, विद्या शरीर है ना। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं विद्या में वैदिक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, विद्या है ना। तो मंत्र भी इसमें पढ़े जाते हैं, विद्या का मतलब होता है वैदिक ज्ञान, मंत्रों के रूप में मेरा शरीर है, वैदिक मंत्र है ना। दूसरी बात है विद्या भगवान का शरीर, ठीक है। तीसरी बात क्रिया आकृति, भगवान के शरीर की आकृति क्या है, क्रिया है ना। आकृति का मतलब सौंदर्य भी कह सकते हैं, शरीर है तो बता दिया भगवान ने शरीर, लेकिन फिर सौंदर्य भी तो होना चाहिए ना, तो भगवान का सौंदर्य भी है। तो सौंदर्य किससे होता है, भगवान का क्रिया से है ना। तो कर्मकांड में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, नित्य क्रिया, नैमित क्रिया, क्रिया, तो ये जो है मतलब भगवान का सौंदर्य है, या श्रृंगार आभूषण है ना, तो ये भी तो होना चाहिए शरीर के साथ में, वस्त्र है, आभूषण है, हैं और श्रृंगार है ना, डेकोरेशन, तो ये भी होना चाहिए। तो तीसरी बात क्या है, क्रिया भगवान का क्या है, आकृति है, श्रृंगार है। फिर चौथी बात अंगानि कृतवो जाता, कृतवो जाता, जाता माने पूरे जब हो जाएं तब वो क्रतु जो है मतलब भगवान के अंग बनते हैं, भगवान के अलग अलग अंग हैं। क्रतु का मतलब है यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, क्रतु और यज्ञ में भी कुछ अंतर होता है, स्मार्त यज्ञ और वैदिक यज्ञ, तो उस एक को यज्ञ कहते हैं दूसरे को क्रतु कहते हैं। तो यज्ञ या क्रतु जो है ये भगवान के शरीर के अंग हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अलग अलग नाम के यज्ञ होते हैं, वो तो भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, है ना। तो चौथी बात क्या है, भगवान के शरीर के अंग क्या हैं, क्रतु यज्ञ है ना। यहाँ शब्दार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक वायम, वैदिक वाङ्मय में उल्लिखित कर्म कांड तथा यज्ञ, जाता माने पूर्ण किए गए, जब पूरे हो तब कहीं भगवान का अंग बन पाते हैं वो, अगर बीच में कुछ बाधा पड़ गई तो सब बेकार हो जाता है ना। कोई भी यज्ञ अगर बीच में कुछ बाधा आ जाए तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है, जब तक कि पूरा सब अंग उसके पूरे ना हो तब तक वो जो है पूरा नहीं माना जाता, उसका कोई फल नहीं होता है ना। तो जाता का मतलब पूरे, जब पूरे हो जाए तो वो भगवान का अंग बनते हैं, है ना। अंगानि कृतवो जाता है, कितना हो गया, ये चौथी बात है, चौथी बात है ना। पांचवी बात क्या है, धर्म आत्मा, धर्म जो है मेरा आत्मा है, तो भगवान की आत्मा में शरीर में तो अंतर है नहीं, तो आत्मा का मतलब यहाँ मन बताया गया है, आत्मा का अर्थ मेरी आत्मा, अनुवाद में प्रभुपाद जो है मन भी कहते हैं, तो धर्म आत्मा, तो धर्म जो है मेरा मन है, है ना, तो धर्म मेरा मन है, आत्मा कह दो मन कह दो, भगवान के लिए कुछ है? आत्मा में मन में कोई अंतर नहीं है, है ना, तो भगवान के लिए जो है धर्म उनका का मन है। और फिर ये तो पांचवीं बात है ना, धर्म उनका मन है, है? फिर छठवीं बात क्या है, असभा सुरा, सुरा माने देवतागण, मेरे प्राण हैं, देवतागण मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण हैं, प्रभुपाद लिखते हैं जीवन और आत्मा, है ना, क्योंकि कर्म कांड में देवताओं के नाम से ही आहुतियां डाली जाती हैं, है ना, और वो भगवान को प्राप्त होती हैं, भगवान को प्राप्त होती हैं, लेकिन ये विधि है इस तरह की, समझने की ये विधि है कि किसी भी देवता को आप भगवान से स्वतंत्र ना समझें तो उन देवताओं के नाम से आहुतियां जो डाली जाती हैं वो भगवान को प्राप्त होंगी, लेकिन समझना चाहिए कि भोक्ता कौन है, भगवान है, है ना, तो भगवान भोक्ता है, इसको समझ करके कोई व्यक्ति किन देवताओं के नाम से भी यज्ञ करता है और आहुतियां डालता है तो भगवान को प्राप्त होती हैं, लेकिन देवताओं को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। जैसे भगवान क्या, भगवान ने क्या कहा, असभासुरा कि देवता मेरे प्राण हैं, तो मेरे शरीर में जो प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान ये सब जो है मेरे शरीर के आश्रित है ना, तो देवता भगवान के आश्रित हैं, स्वतंत्र नहीं है, है ना, तो देवताओं की पूजा की जा सकती है लेकिन उनको स्वतंत्र नहीं समझना है, है ना, तो भगवान ने जो है अपना इस तरह से शरीर बताया, कर्म कांड के अनुसार जो है भगवान ने अपना शरीर बताया कि इस प्रकार की भावना से आप कर्म कांड के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की, प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, आप प्रभुपाद किन की बात कर रहे हैं, नास्तिकों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान कर्मकांडियों की बात कर रहे हैं, कर्मकांड है ना, तो कर्मकांड भी जो है भक्ति से बहुत पीछे है, कर्मकांड जो है उपासना कांड से बहुत पीछे है, बहुत दूर है ना, लेकिन नास्तिकों से तो बहुत अच्छे हैं, कर्मकांड भी जो है नास्तिक लोगों से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नास्तिक लोग तो कोई मतलब मानते ही नहीं कुछ, हाँ कोई अधिकारी नहीं मानते अपने से ऊपर, किसी का जो है शासन ही नहीं मानते अपने ऊपर, किसी शास्त्र को ही नहीं मानते, है ना, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नास्तिक लोग तर्क करते हैं ईश्वर हमें आँखों से नहीं दिखते, है ना, तो उनका ये तर्क होता है कि भाई हम ईश्वर को क्यों माने, जब तक हमें ना दिखाई दें तो हम ईश्वर को क्यों माने, ये समस्या ये है कि ईश्वर को तो कुछ मतलब जरूरत नहीं पड़ी है कि आपको दर्शन दें तो आप मानो, तो ईश्वर को तो कुछ भी जरूरत नहीं है कि आप माने या ना माने, तो ईश्वर क्यों दर्शन देंगे, आप समझ रहे हैं, नास्तिक लोग जो है तर्क करते हैं कि ईश्वर को हम मानेंगे जब ईश्वर हमें दर्शन देंगे, है ना, तो ईश्वर ईश्वर क्या कहते हैं है? कि तुम मुझे मानो या ना मानो इससे मुझे क्या करना है, मैं क्यों दर्शन दूँ कि नहीं, है ना, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा, भक्त्या तो नन्य आसक्त, मुझे देख भी सकता है ना, अन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे देख सकता है तो भगवान क्यों दर्शन देंगे, है ना, तो वो अपने इज्जत में आ रहे हैं नास्तिक लोग कि भगवान जब दर्शन देंगे तो हम उनको मानेंगे, है ना, और भगवान अपनी इज्जत में पड़े, भगवान अपनी इज्जत में आ रहे हैं है? कि मैं दर्शन क्यों दूँ, तुम नहीं मानते हो तो मेरा क्या नुकसान है, मुझे क्या पड़ी है कि तुम मुझे मानो, है ना, तो प्रभुपाद जो है उसमें समझौता कर रहे हैं, प्रभुपाद जो है बीच क्या बोलते हैं उसको, बीच बचाव करने वाला, हिंदी में क्या बोलते हैं मध्यस्थ, प्रभुपाद मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं देखते इसलिए भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके लिए भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे भी ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं, कम से कम इस तरह से तो देखो, इस तरह से तो देखो ईश्वर को, है ना, फिर आगे तुम और देख सकते हो, तो ईश्वर का जो है इस प्रकार का रूप तो देखो, है और पालन करो इस विधि का, कम से कम इस विधि का पालन करो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देखो इस तरह से भी तो देखो है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है ना। बुद्धिमान लोग देख सकते हैं साकार रूप में, यहाँ पर है बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। ये नास्तिक लोग कहेंगे कहाँ है, यहाँ पर क्या है, ये तो पत्थर से आपने बनाया, मनुष्य नहीं बनाया है, मनुष्य नहीं जो है पत्थर से मूर्तियाँ बनाई हैं, इसको हम नहीं मानते है ना। बुद्धिमान लोग देख सकते हैं ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं है? आगे जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया, शास्त्रों में बतलाया गया, शास्त्रों के अनुसार जो है ये बनाई गई मूर्तियाँ भगवान के रूप के अनुसार बनाई गई हैं और इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। तो बुद्धिमान लोग देख सकते हैं है ना। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए आतुर है, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा, वो आतुर है, उसकी जिद है, नहीं नहीं मैं ऐसे ईश्वर का दर्शन नहीं करना चाहता, मुझे नहीं मानना, मुझे तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे ईश्वर मुझे चाहिए, मैं देखूँ, आतुर है, है? वो उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वो इस वर्णन के माध्यम से भगवान को देख सकता है। तो ये वर्णन है, अगर तुम आमने सामने देखना चाहते हो तो ये वर्णन है ईश्वर का है ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब तो बड़ा अच्छा ये सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि आप कुछ करो ईश्वर के लिए। अभी ईश्वर ने जो है इतना बताया आपने को कि मैं इस तरह से हूं, तो करो इसके लिए कुछ तपस्या करो, तपस्या है, विद्या है ना, और क्या है, क्रिया और क्रतु, ये सब जो है मतलब कार्य करो, तो फिर और आगे समझ पाओगे ईश्वर को। ईश्वर तो आपको मतलब बता रहे हैं कि मैं शरीर हूँ इस तरह का। आगे जिसमें उनके शरीर के विविध आंतरिक और बाहरी अंगों का चित्रण हुआ है, आंतरिक अंग और बाहरी अंग। आंतरिक अंग तपस्या, ये हृदय, हृदय क्या है, आंतरिक अंग है कि नहीं, और बाहरी अंग क्या है, विद्या, ये पूरा शरीर बताया है, क्रिया आकृति श्रृंगार है, और क्रतु उनके अंग हैं, उसमें कुछ बाहरी हैं कुछ आंतरिक भी हैं, और धर्म क्या है, मन, ये आंतरिक है, मन तो धर्म है ना, और देवता प्राण है, ये आंतरिक है ना। तो कुछ आंतरिक अंग है कुछ बाहरी अंग है ना। तो ईश्वर ने बताया तो अगर ईश्वर कुछ बता रहे हैं तो कुछ करो। तो प्रभुपाद का ये सुझाव है कि कुछ करो ईश्वर के लिए, तो फिर तुम और कुछ समझ पाओगे ईश्वर को, कुछ और ईश्वर तुम्हें जनाएंगे है ना। लेकिन अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा ना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा है ना। अब ईश्वर ने अगर बता दिया है, कुछ तो बताया, अगर कुछ आपको सुराग दिया है तो उसके अनुसार कुछ करो, जिससे कि और आगे पता चलेगा तुमको है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना। क्या इसमें है ना, पहला तपस्या, तपोमय, आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना है ना। ये कर्म कांड के अनुसार ये जो है तपस्या पहला सिद्धांत है ना। जैसे भक्ति में पहला सिद्धांत है, हम लोग कहते सेवन मुखे जिहेवादो, जिहेवा के द्वारा नाम लेना और प्रसाद खाना, ये पहला सिद्धांत भक्ति में पहला सिद्धांत है, जिहेवा के द्वारा नाम लेना और केवल प्रसाद खाना। देखिए लेकिन कर्मकांड में पहला तपस्या, रूपल में तपस्या में लगना, अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। तो आप कुछ करो इस तरह से, तपस्या करो, भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं, यथा वैदिक यज्ञ करना है। वैदिक यज्ञ इसमें कौन से नंबर में है, वो यज्ञ, हाँ यज्ञ जो है उनके अंग हैं, चौथी बात है ना, चौथा। तो प्रभुपाद जो है यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये चौथा इसमें श्लोक में चौथा, चौथे क्रम पर है ना, यज्ञ करना। फिर वैदिक ज्ञान का अध्ययन करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन करना इसमें श्लोक में क्या है, है, दूसरा विद्या, विद्या के नाम से वैदिक ज्ञान का अध्ययन करना, फिर प्रबलते हैं भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये कौन सा क्रिया, अच्छा क्रिया देखना पड़ेगा, इसको हम क्रिया मान सकते हैं या धर्म मान सकते हैं, धर्म जो पांचवा है धर्म मान सकते हैं, देखते हैं आगे और क्या लिखा है। भगवान का ध्यान, तो भगवान का ध्यान इसको आप क्रिया मान लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन को धर्म मान लीजिए, तो सब आ गए ना इसमें, पांचवा आ गए। फिर प्रबलित मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे, ये छठवां भी आ गया, देवता लोग उनके प्राण हैं। तो छह बातें आ गई प्रभुपाद ने तात्पर्य में, छह बातें बतला दी है ना, देवताओं का भी सम्मान करे और ये समझे कि वे किस तरह स्थित हैं, किस तरह कार्य करते हैं तथा इस भौतिक जगत के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं देवता लोग। तो कर्मकांड में जो है देवताओं का बड़ा महत्व है, क्योंकि देवता लोग भगवान के कर्मचारी हैं, भगवान के जो है ये वर्कर्स हैं, उनके जो है सेवक हैं और काम करने वाले हैं। और देखो कितना भगवान का जो है ये सब जो है सर्किल कितना बढ़िया बना है, पूरी सृष्टि में देवताओं का जो है कितना अच्छा सब जो है बना हुआ है व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था देवताओं के द्वारा भगवान करा रहे हैं, कितनी पूर्ण व्यवस्था है, और भगवान के द्वारा ही ये सब मतलब लगाए गए हैं, सब देवता लोग कार्य कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य देख सकता है, तो इस तरह से भगवान को देखो, इस तरह से भगवान को देखो, है ना, तो बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है कि मतलब कोई भगवान है, कोई ईश्वर है जिसकी व्यवस्था से सब कुछ हो रहा है, कि नहीं कैसे मतलब किसी के प्रशासन के बिना कैसे हो सकता है सब कुछ जो है, मतलब कितने अच्छे तरीके में हो रहा है, व्यवस्थित तरीके में हो रहा है कि नहीं, जैसे आपके शरीर में ही भोजन कैसे पच रहा है, कैसे खून बन रहा है और खून जो है पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, खून की छनाई हो रही है, छन रहा है खून भी, छन रहा है, कितना मतलब व्यवस्थित है शरीर में, और पूरी सृष्टि में भी कैसी व्यवस्था है, सूर्य का उदय कैसे हो रहा है, ठीक समय पर हो रहा है ना, ये सब ग्रह कैसे चल रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कोई टकराहट नहीं हो रही है, रोज दिल्ली में जो है गाड़ियों की टकराहट होती है, एक्सीडेंट होते हैं, है ना, इन भगवान की व्यवस्था में कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, असंख्य ग्रह हैं चल रहे हैं, है ना, लेकिन सब जो है मतलब ठीक समय पर ठीक अपनी निश्चित गति से और निश्चित रास्ते में सब ग्रह चल रहे हैं, है ना, कितनी मतलब पूर्ण व्यवस्था है, है ना, तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रभु लिखते हैं कि देखिए भगवान को, इस तरह से भगवान को देखिए, भगवान को स्वीकार करिए कि कोई है, और वो क्या कहते हैं, आज के वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है, है ना, तो ऑटोमेटिक मशीन भी अगर किसी ने बनाई है तो उसका कितना दिमाग है ऑटोमेटिक मशीन में, और फिर बनाने के बाद भी कोई ऑपरेटर होता है, नहीं तो वो बिना ऑपरेटर के ऑटोमेटिक मशीन भी काम नहीं करती है ना। तो इस तरह से भगवान ने भी जो है भौतिक प्रकृति की जो मशीन है वो बनाई है और उसको भगवान ऑपरेट भी कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के ऊपर पूरा भगवान का नियंत्रण है और भौतिक प्रकृति से कैसे सब कार्य हो रहे हैं। तो आगे प्रभु लिखते हैं, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9:10 में कहा है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, अच्छा कुछ छोड़ दिया मैंने, इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है, उसके पहले भी मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे और ये समझे कि वे किस तरह स्थित हैं, किस तरह कार्य करते हैं तथा इस भौतिक जगत के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं। इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है। अगर भगवान ना हो, है ना, अब जैसे कंपनी में जो है कितना काम हो रहा है, कोई साबुन की कंपनी है या कोई है ना किसी भी चीज़ की कंपनी है, सामान बन रहा है हो रहा है, हैं, लेकिन उसका जो मालिक है वो नहीं दिखाई देता। आप कहें नहीं कंपनी का कोई मालिक नहीं है, अपने आप सब काम हो रहा है ना, तो मूर्खता है। उसी प्रकार से भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था से सब काम हो रहा है, वो कितने अच्छी तरह से हो रहा है ना। तो उसी तरह से रूपा लिखते हैं, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9:10 में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, लेकिन भगवान ही दिखाई दे रहे हैं और प्रकृति दिखाई दे रही, आप समझ रहे हैं। जैसे कि जैसे हमने बताया भी कंपनी का डायरेक्टर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी के सब काम मतलब हो रहे हैं ठीक से। तो आप कहें नहीं कोई डायरेक्टर ही नहीं, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को क्या पड़ी है कि आपको दिखाई दे वो, है ना। तो भगवान को क्या जरूरत है कि वो दिखाएं अपने को कि देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ प्रकृति की अध्यक्षता, भगवान को क्या पड़ी, है ना। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसके शासन के द्वारा ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भौतिक प्रकृति जो है उत्पन्न भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है, प्रत्येक जीव चर अचर जितने भी प्राणी प्रकृति ने जो है मतलब सब कुछ सब कुछ कर रही है, लेकिन भगवान की डायरेक्शन में अध्यक्षता में है ना कार्य कर रही है। आगे प्रभु बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है, क्या अगर कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है यानी नहीं देख पाता, यद्यपि वे अपने विभिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान है, यद्यपि है भगवान, क्योंकि अभी अवतार मतलब भगवान के अर्च अवतार अर्च विग्रह के रूप में कृष्ण जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर जगह जगह है, तो कृष्ण विद्यमान है अपने अवतारों के रूप में, अपने विभिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान है। तो उनके बहुत से अवतार हैं अर्च विग्रह के रूप में कहाँ कहाँ कृष्ण के मंदिर में, तो वो तो विद्यमान है, यद्यपि विद्यमान है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, कोई व्यक्ति नहीं देख सकता कृष्ण को, है? तो प्रभु लिखते हैं, तो वो भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। भौतिक प्रकृति कार्यकलाप देखो और मानो और वेदों में जो दिए निर्देश हैं उनका पालन करो तो तुम अनुभव करोगे, लेकिन आपकी तरफ से कुछ करना होगा, आपकी तरफ से भी कुछ कार्य करना होगा, तब वो अनुभूति और आपको प्रदान करेंगे ना। आगे प्रभु लिखते हैं, वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है। धर्म धर्म है ना, इसमें पांचवें नंबर में धर्म आत्मा। तो प्रभु कहते हैं धर्म का मतलब क्या है, वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है ना। धर्म आप अपने घर में नहीं बना सकते, वेदों में जो आदेश दिए गए हैं तो वे जो है धर्म कहलाते हैं, है ना। यमराज जो है अपने यमदूतों को बताते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म तो साक्षात भगवान का बनाया हुआ है ना, लेकिन चूंकि आप भगवान को नहीं मान रहे है ना, तो प्रभुपाद क्या करें, वेदों के आदेश भी धर्म है आपके लिए, क्योंकि आप भगवान को नहीं मानते कि भगवान ने बनाया धर्म है, भगवान को आप नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं देख सकते, है ना। तो अभी समझो इतना कि वेदों में जो आदेश दिए गए हैं वेदों के आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है, जैसे कि यमदूतों ने वर्णन किया है भागवत 6:40 यमदूतों ने वर्णन किया, यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा था, अजामिल को जब लेने आए थे यमदूत नरक में ले जाने के लिए, तो विष्णु दूत जो है उनको रोक रहे हैं, तो विष्णुदूत पूछते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है बताओ, इस बात पर पूछ रहे थे कि तुम इस पाप इस व्यक्ति को तुम नरक में क्यों ले जा रहे हो जबकि नरक में जाने लायक नहीं है। अच्छा बताओ धर्म होता क्या है, अधर्म होता क्या है? तो यमदूतों ने जो है मतलब बड़े विश्वास के साथ कहा, क्या ये श्लोक है यमदूतों का, वेदे प्रणिहितो धर्मो हि धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। जो वेदों में निर्धारित हुआ है वो धर्म है, इसका उल्टा धर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है तथा स्वतः उत्पन्न है ऐसा हमने यमराज से सुना है। जो कर्मकांड में व्यक्ति जो है मतलब ज्यादा भगवान को नहीं समझ सकता, इतना ही समझ पाता है भाई वेद, वेदों में जो लिखा है वो धर्म है। तो यमदूतों ने क्या कहा कि वेदों में जो लिखा है वो धर्म है और उसके विपरीत अधर्म है, और वेद ही साक्षात नारायण है और स्वयंभू है, अपने आप हुए, वेदों को किसी ने नहीं बनाया। वेद ही साक्षात नारायण है और अपने आप ही उत्पन्न हुए, जबकि जो भक्ति मार्ग में ये बताया जाता है कि वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, वेद थोड़ी अपने आप स्वतंत्र थोड़ी हैं भगवान से, वेद भी भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, वेद भी भगवान के ही आदेश हैं। लेकिन जो कर्मकांडी हैं है ना, तो वो इतना नहीं समझ सकते ना कि वेद भगवान के आदेश है। वो कहते हैं वेद में जो लिखा है वही धर्म है, और वेद किसने बनाए, किसी ने नहीं बनाए, स्वयं ही बने स्वयंभू, हमने ही सुना है। यमदूतों का जितना सीमित ज्ञान है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि ये, तो प्रभुपाद कहते हैं इसको तो समझो अभी इतना, इस सीमित ज्ञान को ही समझो। प्रभुपाद नहीं करें इतने सीमित ज्ञान को ही समझो, कम से कम यमदूतों ने जो कहा तो इतना तो समझो कम से कम कि वेद जो है मतलब प्रमाण है, धर्म और अधर्म का निर्णय करने में वेद ही प्रमाण है। अब वेद को किसने बनाया आप नहीं जानते हैं, वेद अपने आप बने हैं स्वयंभू हैं, ठीक है इतना भी जो है मतलब समझो। तो प्रभुपाद लिखते हैं वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है तथा स्वतः उत्पन्न है ऐसा हमने यमराज से सुना है। तो वो अलग नारायण को और मानते नहीं, यमदूत जो है वेदों को ही साक्षात नारायण मानते हैं और वेदों के अलावा किसी अलग नारायण को नहीं मानते। इसलिए अजामिल ने नारायण नाम पुकारा था अपने पुत्र को, तो यमदूत ने उसको नहीं माना कि ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वेदों से ऊपर है, भगवान का नाम जो है वेदों से बहुत ऊपर है, तो यमदूत ने उसको नहीं माना, ये तो वेद के विरुद्ध काम करता था इसलिए नरक में जाएगा। अब इसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो उससे क्या है, हम तो नहीं मानते कि नारायण नाम का उच्चारण करने से ये नरक से छूट सकता है, उनका ये कहना है। वेद ही साक्षात नारायण है, वेदों से ऊपर कोई नारायण नहीं होते, हम नहीं मानते किसी को नारायण वेदों से ऊपर, वेदो नारायण आचार्य, वेद ही साक्षात नारायण है और स्वयंभू और स्वयं प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है ना। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कम से कम इतनी को तो समझो अभी, अभी इतनी सीमित जो बात है इसको तो मानो अभी। तो प्रभुपाद जो है ये सुझाव दे रहे हैं कि कम से कम यमदूतों ने जो कहा कम से कम यहाँ पर तो आओ अभी है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस संबंध में श्री मध्वाचार्य की टिप्पणी है, ये बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने जो है मध्वाचार्य की टिप्पणी दी है इस श्लोक में। तो इसमें छह बातें जो लिखी हैं उन्हीं को मध्वाचार्य और समझा रहे हैं। क्या लिखा है, तपोभिमानी रुद्रस्तु विष्णु हृदयम आश्रिता, जो श्लोक में लिखा ना क्या, तप तपस्या मेरा हृदय, भगवान के तपस्या मेरा हृदय है, तो यहाँ मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि तप के अभिमानी रुद्र ये विष्णु के हृदय के आश्रित हैं। तपस्या की मूर्ति कौन है, शिव जी, और विष्णु के हृदय में आश्रित हैं, है ना। तो इसको और मध्वाचार्य ने इसको जो है कुछ और समझाया, तो तपस्या तपस्या का जो सिद्धांत है वो शिवजी में है और शिवजी जो है विष्णु के हृदय में आश्रित हैं। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है श्लोक में, विद्या, विद्या भगवान का शरीर है, तो ये लिख रहे हैं विद्या रूपा तथा वो माँ, उमा यानी शिव जी की पत्नी उमा, ये विद्या रूपा है, है? विष्णु स्तनु आश्रिता, ये विष्णु का शरीर है। तो शिव जी विष्णु का हृदय है, है किस रूप में? तपस्या के रूप में। और उमा देवी विष्णु का शरीर है किस रूप में? विद्या के रूप में, है ना। तो तीसरी बात क्या लिखा है? क्रिया, है? क्रिया क्या है? भगवान का श्रृंगार है, आकृति। तो यहां लिखा है श्रृंगार आदि आकृति गतहा क्रियात्मा पाक शासना, यानी इंद्र है? तो श्रृंगार आदि आकृति गतहा, भगवान की आकृति जो श्रृंगार है वो इंद्र है, है? इंद्र है। और फिर ये तो तीन हो गए ना, चौथा क्या है? है हाँ, जो यज्ञ है क्रतु है, ये भगवान के अंग है। किसमें लिखा है? अंगेशु कृतवा सर्वे, जितने भी क्रतु हैं, जितने मतलब यज्ञ हैं, वो भगवान के शरीर के अंग हैं। अलग अलग नाम के यज्ञ होते हैं, वो भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। फिर क्या है? धर्म आत्मा। किसमें लिखा है? मध्य देहे च धर्मराट, लेकिन धर्मराट यानी राजा है, उन सब के राजा धर्म है जो शरीर के मध्य में है, यानी हृदय में। भगवान का हृदय धर्म। इसके बाद क्या है? हाँ, देवता उनके प्राण है। तो इसमें लिखा प्राणो वायुश्चित्त गतो ब्रह्माद्याश्वेषु देवता, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं वो भगवान के प्राण वायु जो चित्त में निवास करते हैं, ये सब देवता हैं, है ना। आगे प्रभुपाल लिखते हैं विभिन्न देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। देवताओं के अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके अनुसार उन देवताओं के अलग अलग नाम पड़े हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा? मैं इसमें से थोड़ा और मैंने कुछ लिखा है बातों, कुछ बातों को जो यज्ञ बताए गए हैं। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में जब वराह भगवान ने अवतार लिया तो ऋषियों ने जो है उनकी स्तुति की थी। उसमें उन्होंने कहा था आपके रोम कोप में संपूर्ण यज्ञ लीन है, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना कठिन है क्योंकि ये आपका शरीर यज्ञ रूप है, रोमावली में कुशा है। यज्ञ की जो कुशा होती है रोमावली, आपके रोएं कुशा, नेत्रों में घी है, चार चरणों में होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा चार ऋतुजों के कर्म हैं, थूथनी में स्त्रुक है, यज्ञ का एक पात्र होता है तो थूथनी भगवान की वो स्त्रुक है, और नासा छिद्रों में स्त्रुवा है, स्त्रुवा भी यज्ञ का पात्र है, वो नासा छिद्र है, उदर में इड़ा, इड़ा भी यज्ञ का एक पात्र होता है, वो भगवान का पेट है, कानों में चमस है, चमस भी यज्ञ का बात होता है वो कान, और मुख में प्राशित्र है, प्राशित्र भी यज्ञ का एक पात्र है, भगवान का मुख है, और कंठ क्षेत्र में सोम पात्र है, कंठ क्षेत्र ये है ना, कंठ कूप भी बोलते हैं ना, तो ये भगवान का कंठ क्षेत्र जो है सोम पात्र, ये भी यज्ञ का एक पात्र है, चबाना अग्निहोत्र है, जब आहुति डालते हैं तो चटचट की आवाज होती है ना, उसमें अग्नि में चटचट की आवाज होती है, आपका चबाना है वो, तो भगवान को जो है उन्होंने इस तरह से ऋषियों ने प्रार्थना की थी, स्तुति की थी भगवान की। हाँ, इसमें जो है एक कविता भी बनाई है विष्णुप्रिया देवी ने, इसको आप सुनिए, इसमें हिंदी में कविता लिखी है। हे ब्रह्मन ये जान लो तपस्या मेरा है हृदय, विद्या ही मम शरीर है, आकृति कर्म को जान लो, यज्ञ अंग ये मेरे हैं, धर्म ही मेरा मन जानो, देवता मेरे प्राण हैं, हे दक्ष तुम ये पहचानो। ठीक है, अच्छा है कविता जी। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा?
देखिए वेदों में जो है
तीन विभाजन है, तीन विभाग हैं वेदों के। पहला विभाग है कर्मकांड, दूसरा विभाग है ज्ञान कांड और तीसरा विभाग है उपासना कांड, है ना। तो ये व्यक्ति के अधिकार के अनुसार ये अलग अलग विभाजन हैं वेदों के। तो कुछ लोगों को कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है, कुछ लोगों को ज्ञान कांड की शिक्षा दी जाती है, कुछ लोगों को उपासना कांड की शिक्षा दी जाती है। वेदों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया भगवान के द्वारा। तो तीनों कांड जो है ब्रह्मा जी ही मतलब प्राप्त कर सके भगवान के द्वारा, है ना। और फिर उसमें तीनों में जो है जो उपासना कांड है यानी जो भक्ति है, तो वो तो ब्रह्मा जी ही जानते हैं कि भक्ति ही वेदों का असली तात्पर्य है, है ना। अब ब्रह्मा जी ने जो है दक्ष को वेदों का कर्मकांड विभाग दिया, जो कर्मकांड के द्वारा आप करें। कर्मकांड जो है उनके लिए है जिनको भौतिक संसार में कुछ भोगने की इच्छा होती है, तो उनको जो है कुछ अनुष्ठान बताए जाते हैं कि वेदों में ये करो, इस तरह से आप भोगो। तो इस भौतिक सृष्टि में आपकी भोगने की इच्छा है तो इस विधि से भोगो जिससे कि आप उसका जो है प्रतिक्रिया न आपके ऊपर ना आए, है ना। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति की जो है प्रतिक्रिया वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो वेदों के कर्म कांड के अनुसार आप इंद्रिय तृप्ति करिए। तो इस तरह से कर्म कांड का जो हिस्सा है वो तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को दिया। फिर दूसरा हिस्सा है वेदों का ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में वेदों ने मतलब बताया है कि आप कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं। तो ज्ञान कांड जो है वेदों का ये आपको बताता है कि आप किस तरह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आपको कैसे बंधन से छूटना है, है ना। लेकिन उपासना कांड उनके लिए है जो भगवान को समर्पित हो करके और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के आदेश का पालन करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो जीव भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए वेदों का उपासना कांड है, है ना। तो जो कर्म कांड हिस्सा है वेदों का दक्ष प्रजापति को दिया ब्रह्मा जी ने, और वेदों का जो ज्ञान कांड का हिस्सा है वो चार कुमारों को दिया ब्रह्मा जी ने, है ना। और जो उपासना कांड का हिस्सा है वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, है ना। तो नारद जी की शिष्य परंपरा में हम लोग हैं जो कि मतलब भक्ति का जो है ये संप्रदाय चल रहा है, वो नारद जी की शिष्य परंपरा में है। तो इस तरह से समझना है। आगे चलकर के चार कुमार भी जो है फिर भक्ति की परंपरा में आ गए, हैं वो एक अलग घटना है कि वो कैसे आए भक्ति की परंपरा में, है ना। तो चार कुमार भी आ गए भक्ति की परंपरा में, है ना। और ब्रह्मा जी ये जो दक्ष हैं ये जो है मतलब कर्मकांड, इनको कर्मकांड प्राप्त हुआ है, इनको भी भगवान दर्शन दे रहे हैं। और कर्मकांड के द्वारा भी जो है कोई व्यक्ति शुद्ध होता है और विधि पूर्वक अगर करे तो शुद्ध होगा तो वो भी जो है फिर इसमें आएगा, किसमें आएगा, उपासना कांड में आएगा, भक्ति में आएगा, है ना। तो भगवान दक्ष को भी जो है मतलब विधि बता रहे हैं, साक्षात दर्शन भी दिया दक्ष को भगवान ने। लेकिन यही है कि अब इंद्रिय तृप्ति का ये रास्ता है तो इसमें फिर अपराध होते ही हैं। तो पिछले जन्म भी दक्ष ने अपराध किया, शिव जी का अपराध किया, फिर शरीर छोड़ना पड़ा, फिर शरीर फिर प्राप्त हुआ तो बकरे का सिर प्राप्त हुआ, फिर शरीर छोड़ा, फिर अभी दक्ष के रूप में आए हैं, फिर भगवान को जो है उन्होंने प्रसन्न किया है। तो इस तरह से ये चलता है। और हाँ जी, सबको नहीं सुनाई पड़ रहा, जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोल सकते हो, हैंड माइक नहीं है ना, हैंड माइक नहीं है, बिना माइक के बोलो, जोर से बोलो थोड़ा।
भगवान भगवद गीता में,
हाँ 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 ठीक है,
हाँ, बोलो। भगवत गीता में बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मतलब भगवान को भक्ति के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दक्ष प्रजापति कर्मकांड ब्राह्मण जैसे भगवान भी कहते हैं यहाँ पे, तो कर्मकांड विधान के द्वारा जो है भगवान को प्राप्त किया। इससे इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि आप मुझे मेरे ही इच्छा है कि इस सृष्टि का विस्तार हो, मेरी इच्छा के अनुसार ही आप भी अपना इच्छा को जोड़ा, फिर उसी के लिए आपने तपस्या किया। तो मतलब दक्ष प्रजापति भी भगवान का ही इच्छा के अनुसार ही तपस्या किए थे। सो जब हम अपना इच्छा को भगवान की इच्छा से मिलाते हैं, उसका मतलब है कि लगभग वो भक्ति की भक्ति जैसा ही है। सो यहाँ पर कर्मकांडी विधान जो है अगर सही उद्देश्य किया जाए तो उसको भी भक्ति कहलाते
हैं। अच्छा प्रश्न। बात यह है कि कर्म कांड में साथ साथ अपनी भी इंद्रिय भोगने की इच्छा है, भक्ति तो यह भी है, कर्म कांड भी भक्ति है, ठीक है ना, कर्म कांड भी भक्ति है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा होती है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति भी मतलब करना है, है ना। तो वो जो है मतलब कहने का ये है कि शुद्धिकरण के लिए भगवान बतला रहे हैं कि आप किस तरह से करें, किस भावना से करें, है ना। तो कम से कम जो है अगर इतना आप समझेंगे कि भगवान का ये शरीर है और देवता भी जो है भगवान के शरीर में है, है ना, आप जो है किसी को स्वतंत्र मत समझिए, भगवान की जो भगवान का जो नियंत्रण है वो आप देखिए, हर चीज़ में भगवान का नियंत्रण है, तो आप कम से कम शुद्ध होंगे ना धीरे धीरे। तो शुद्धिकरण के लिए हैं वेदों के जो है सभी जो कांड हैं ये शुद्धिकरण के लिए हैं, है ना। लेकिन बस यही कि अपराध होने की संभावना हो जाती है, कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, है ना, तो अपराध होने की संभावना होती है उससे। हाँ जी, हाँ, तपस्या जो है यहाँ पर जो लिखा है प्रभुपाल लिखते हैं तपस्या मन का नियंत्रण योग तथा ध्यान जैसी तपस्याएं हैं, और यहाँ तात्पर्य प्रभुपाल लिखते हैं तपस्या में लगना अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना, है ना। तो ये भी मतलब कम से कम आप अगर शास्त्र के अनुसार जो बातें बताई गई हैं उनका पालन करने के लिए आप तैयार हैं तो ये भी आपकी एक तपस्या है कि आपने जो है इस असुविधा को स्वीकार किया, आप अपनी अपने मन के हिसाब से आप कुछ भी मतलब करते हैं, है ना, तो उसको अगर आप नियंत्रित कर रहे हैं, अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं, आपके मन के हिसाब से तो ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए, लेकिन आप फिर नहीं चलते हैं और आप जो है शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो एक ये भी तो एक तपस्या हो गई ना कि आप जो है बहुत कार्यकलापों को बंद कर रहे हैं और फिर एक दूसरे दिशा में आप चल रहे हैं, आध्यात्मिक दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर तपस्या इस तरह से भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कृष्ण कुमार जी फिर बाद में माता जी। हाँ हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। देवताओं को स्वतंत्र मान करके जो पूजा करते हैं तो भगवान गीता में बताते हैं ये पिण्य देवता भक्ता जनते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्ते जनते विधि पूर्वकम, कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं ये पिण्य देवता भक्ता जनते श्रद्धयान्विता और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं स्वतंत्र मान करके देवताओं को, है तो वे मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं मेरी पूजा, है अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रेव चा, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, न तो माम भी जानते तत्व नातश्च वंदिते, वो मुझे नहीं जानते हैं तत्व से इसलिए गिरते हैं, तो ये पतन का कारण है, है ना। कोई व्यक्ति जो है अगर किसी सत्ता को मानता है, कोई सत्ता है जो सबके ऊपर है और देवताओं से ऊपर है और ये देवता लोग जो है उसके अधीन हैं, तो इतने से जो है उसकी रक्षा होती है, देवताओं को स्वतंत्र मानना ये पतन का कारण है, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट भगवान को नहीं समझ रहे हैं तो भी आप एक सत्ता को समझ रहे हैं, है ना। तो ये केनोपनिषद में कथा आती है कि देवताओं ने जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो उनको गर्व हुआ कि हमने हमारी अपनी शक्ति है, हमने अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की। तो भगवान एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए, यक्ष के रूप में प्रकट हुए। तो ये देवताओं ने जब देखा, इंद्र ने देखा, तो उनको बहुत मतलब भय पैदा हो गया। और यक्ष की कितनी शक्ति है, यक्ष कौन है, उसको जानने के लिए उन्होंने पहले अग्नि देवता को भेजा कि आप जरा जाओ पता लगाओ कि यक्ष कौन है, उनकी शक्ति कितनी है, क्या है। तो अग्नि देवता आए और यक्ष से पूछा कि आपकी क्या शक्ति है, आप कौन है। तो यक्ष ने पूछा कि आपकी क्या शक्ति है। अग्नि देवता ने कहा कि मेरी शक्ति यह है कि संसार की किसी भी चीज़ को मैं जला सकता हूँ। तो यक्ष ने एक तिनका दिया, एक तिनका रखा सामने, बोले जलाओ इसको। तो अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई अपनी, वो तिनका भी नहीं जला पाए, है ना। तो फिर अग्नि देवता आए तो इंद्र को क्या बताया, पूरी बात नहीं बताई क्योंकि अपनी इसमें बेइज्जती होती ना। इसने पूरी बात नहीं बताई। बोले मुझे पता नहीं चला कौन है। अच्छा, तो पवन देवता को बोला, वायु देवता को, आप जाइए आप पता लगाइए। तो वायु देवता आए, यक्ष से पूछा आप कौन है, आपकी क्या शक्ति है। यक्ष से पूछा आपकी क्या शक्ति है। तो वायु देवता बोले मेरी शक्ति यह है कि मैं संसार की किसी भी चीज़ को उड़ा सकता हूँ। तो मैं वही तिनका रख दिया, बोले उड़ाओ इसको। पवन वायु देवता ने पूरी शक्ति लगाई, वो तिनके को नहीं हिला पाए, उड़ाने के बाद तो दूर हिला भी नहीं पाए तिनके को भी, है ना। तो बड़े लज्जित होकर के इंद्र के पास आ गए तो, और क्या बताए, मुझे पता नहीं चला, आपने पूरी बात नहीं बताई जिसमें अपनी बेइज्जती होती थी, है ना। तो फिर इंद्र सोचते हैं मैं स्वयं जाऊं। तो एक से अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये भगवान है, तुम लोग जो है अपने को स्वतंत्र मान रहे हो, तो तुम लोगों का ये घमंड दूर करने के लिए भगवान जो है यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म कांड में भी जो है व्यक्ति कम से कम भगवान के निराकार रूप को मान करके, और वो माने तो कि नियंत्रण जो है किसी व्यक्ति का है, तो ये मानना जो है अपने आप में एक उन्नति का लक्षण है, पतन का लक्षण। देवता अपने को मानते हैं स्वतंत्र, या आप देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं तो आपका भी पतन है, आपके भी पतन का लक्षण है कि देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं, और देवताओं का भी पतन का लक्षण है कि वे अपने को स्वतंत्र मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान कहते हैं न तो माम अभी जानती तत्व है ना तत्वन, तत्व से वो मुझे नहीं जानते, इसलिए वो गिर जाते हैं। तो देवता क्या रक्षा करेंगे उनकी, वो देवताओं के भक्त हैं तो देवता थोड़ी रक्षा करेंगे, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, भगवान के अलावा कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो इस तरह से समझना है, ठीक है। हाँ हाँ,
अगर कोई तत्व से भगवान को जान ले तब फिर देवताओं की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकता
है। तत्व से भगवान को कोई जान ले तो कभी आवश्यकता पड़े तो देवताओं की पूजा कर सकता है, देवताओं की पूजा कर सकता है, लेकिन वो मतलब भगवान को ही वो प्रसन्न करने के उद्देश्य से वो करता है, और कुछ विशेष आवश्यकताएं पड़ जाएं। तो अभी माता जी बोलेंगे। हाँ, आपने हाथ उठाया था। क्रतु और यज्ञ, हाँ इसमें अंतर क्या, अहम क्रतु और अहम यज्ञ, ये गीता का जो है नवे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं अहम क्रतु अहम यज्ञ सुधा अहम अहम असधम। तो उसमें क्रतु को जो है स्मार्त यज्ञ माना गया है, और जो यज्ञ है उसको श्रौत यज्ञ माना गया है। श्रुति स्मृति दो प्रकार के शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र जो है दो प्रकार के हैं, श्रुति भी हैं और स्मृतियाँ हैं। तो श्रुतियों के अनुसार जो यज्ञ हैं जिनमें कि आहुतियाँ डाली जाती हैं हवन, तो वो यज्ञ समझो, और जो स्मृति के अनुसार जो कार्य होते हैं जो करने होते हैं तो उनको क्रतु समझो। इस तरह से कुछ बताया गया अंतर, श्रौत यज्ञ और स्मार्त। हाँ जी, आप
जैसे कि अलग 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 लोगों के लिए जैसे ये धर्म कर्मियों की है, भक्तों के लिए अलग अलग रूप में भगवान दर्शन अपना रूप दिखाते हैं, जैसे भक्तों को विग्रह के रूप में साक्षात और कर्मकांडियों को इस रूप में दिखा रहे हैं, तो उसमें से जो भगवद्गीता में ब्रह्मांड को किया हुआ है वो किनके लिए है और जो ज्ञान कांड है वो किस रूप में देखते हैं?
भगवद गीता में जो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया है, भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखलाया अर्जुन को, तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि वो अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन के लिए नहीं था, ये केवल ऐसे लोगों के लिए जो अपने को आगे चल करके कहेंगे कि मैं भी ईश्वर हूँ। कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे थे और मनुष्यों के बीच, मनुष्यों के समाज में मनुष्य की तरह आचरण व्यवहार कर रहे थे, और फिर अर्जुन को उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह से कई लोगों को अवसर मिलेगा कि वे भी मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और फिर जो है कभी मौका मिले तो अपने को बोलेंगे हम भी भगवान हैं। तो उनका ये उनकी ये सोच हो जाएगी कि कृष्ण जो है मनुष्य हैं, और वो मनुष्य की तरह मतलब समाज में, मनुष्य के समाज में मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और अर्जुन को जो है उन्होंने मतलब एकदम से बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, तो मैं भी इसी तरह से करूँ, तो मैं भी अपने को कभी भगवान बोल दूँ, है ना। तो अर्जुन ने चाहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे मूर्ख जो इस तरह से लाभ उठाएंगे गीता का, तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए, है ना, तो मैं आपका ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ जिसमें आपका नियंत्रण, और मैं देखूँ कि आपका नियंत्रण है हर चीज़ में। तो भगवान ने जो है अपना विश्वरूप दिखलाया, और उसमें सब कुछ दिखलाया, पूरा विश्व दिखलाया, है ना, जिससे आप हमें, हमारे पास मौका है कि आप अगर अपने को भगवान कहते हैं है? तो दिखाओ अपना विश्वरूप, अपना विश्वरूप दिखलाओ, है ना। तो एक तो भगवान मुझे मिले थे, तो मैंने कहा कि भैया आप लोग भगवान कह रहे हैं तो अपना विश्वरूप दिखलाओ, तो बोले मैं तो दिखा रहा हूँ विश्वरूप लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ये तो आपने सही कहा कि भगवान ने भी कहा था गीता में अर्जुन से कि तुम नहीं देख सकते हो इन नेत्रों से, मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूँ देखो, अब आप मुझे दीजिए दिव्य नेत्र भगवान। तो मुझे आप नेत्र दीजिए जिससे मैं देखूँ। तो वहाँ फिर वो जो है निरुत्तर हो गए, अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो चालाक हैं बहुत लोग, चालाकी करते हैं, अपने को भगवान कहते हैं, है ना। और भगवान ने जो है अपने रूप में अर्जुन को कितना प्रकाश दिखलाया था, हजार सूर्य का प्रकाश भी जो है शायद ही उस रूप के प्रकाश के समान हो, शायद दिव्य सूर्य सहस्त्र से यह भव्य युगपद था, हजार सूर्यों का प्रकाश भी शायद भगवान के प्रकाश के बराबर हो शायद, है ना। तो आप अपने शरीर में जुगनू का प्रकाश निकाल दो जरा, एक एक सूर्य की बात तो बहुत दूर है, जुगनू का प्रकाश भी निकाल के दिखाओ आप, है ना। तो ये सब जो है मतलब जो विश्वरूप भगवान ने जो दिखलाया है अर्जुन को, तो इसमें एक ये था इरादा, ये था अर्जुन का इरादा, ये था कि बहुत लोग जो है कहेंगे हैं, जैसे कृष्ण ने अपने को भगवान कहा तो अर्जुन ने माना, इसलिए मैं भी आप अपने को भगवान कहता हूँ तो आप मुझे भगवान मानो क्योंकि आप भी मेरे मित्र हैं। अर्जुन मित्र थे ना कृष्ण के, तो कृष्ण ने अपने को भगवान कहा तो अर्जुन ने माना तो आप भी मेरे मित्र हैं, तो मैं अपने को भगवान कहता हूँ तो मुझे भगवान मानो, ठीक ही तो है। मित्र जो है, मित्र अपने मित्र की बात को मानता है, आप मेरे मित्र हैं तो मैं अपने को भगवान कहता हूँ तो आप भी मुझे भगवान मानो, अगर आप मित्र हैं तो, मित्र हैं ना मेरे। हैं जैसे अर्जुन कृष्ण के मित्र थे ऐसे आप भी मेरे मित्र हैं, तो मैं अपने को भगवान कहता हूँ तो मुझे मानो भगवान। तो ये मित्रता का फायदा उठाएंगे बहुत लोग, तो आप कहिए हाँ जरूर मैं आपका मित्र हूँ, मैं मानता हूँ भगवान, है ना। मैं अर्जुन ने जो है भगवान से कहा था विश्वरूप दिखाने के लिए, हैं तो आप मुझे दिखाइए, और वो कहेंगे कि हाँ मैं दिखा सकता हूँ आप देख नहीं सकते, है ना, ये भी सही है, भगवान ने कहा था अर्जुन को कि तुम नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ आप दीजिए मुझे दिव्य नेत्र, ठीक है ना। और कोई ज्ञान कांडी भगवान को किस तरह से देखते हैं। ज्ञान कांड जो है, ज्ञान कांड जो है मतलब ये है कि मुक्ति का रास्ता दिखाता है कि आप मुक्त किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, है ना। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। तो अगर वो भक्त के शरण में आ जाए, किसी प्रकार से भक्त का उसको संग मिल जाए, तो फिर वो भक्त बन जाता है, है ना। नहीं तो वो मुक्ति के बाद भी जो है बहुत ही संसार में आएगा, क्योंकि जब तक वो भगवान के जो है चरणों की शरण नहीं लेता है, तब तक मुक्ति में भी जो है उसको कोई सेवा नहीं मिलती है, है ना। तो वो जो है कुछ कार्य करने के लिए वो फिर बहुत ही संसार में माया की सेवा में आता है। अस्पताल खोलना है और गरीबों को जो है कपड़ा दवाई पैसा बांटना, दरिद्र नारायण की सेवा, ये सब जो है करने के लिए आते हैं वो, ठीक है ना। तो चूंकि लक्ष्मी नारायण को नहीं मानते हैं, तो फिर दरिद्र नारायण को मानना पड़ता है, नारायण दरिद्र, आप समझे ना। तो उनको ये सब जो है माया की सेवा करनी पड़ती है, ये माया है। जब कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे ही, है ना। तो इस तरह से वो भक्ति के संपर्क में अगर आ जाए तो फिर वो मतलब आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ, देवताओं के उपासक जो है वो भी पतन, उनका भी पतन होगा, है ना। जो निराकार की उपासना है उनका भी पतन होगा, है ना। तो भक्ति ही एकमात्र, लेकिन ये फिर भी क्रम अगर देखा जाए तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान, भुक्ति कामी वो ज़्यादा नीचे है और उससे ऊपर मुक्ति कामी, नहीं उससे ऊपर है वो मुक्ति कामी, मुक्ति कामी जो है उससे ऊपर है वो, भुक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता, ये मुक्त होना चाहता है, तो वो उससे ऊपर है। पर उससे ऊपर सिद्धि कामी, कोई सिद्धियाँ पाना चाहता है, हैं, तो वो अपने सिद्धियों को दिखा करके लोगों को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मुक्ति कामी से ऊपर है सिद्धि कामी, लेकिन फिर भी ये तीनों अशांत हैं। जब तक कोई कृष्ण भक्त ना हो, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ठीक है। और कोई आपका प्रश्न? हाँ जी,
श्लोक में है कि देवता जो है उनके प्राण है, तो क्या हम देवता देवी देवता क्या जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि?
हाँ, वो मैं बता रहा था कि देवता जो प्राण बताए हैं भगवान, ये कर्मकांड के अनुसार है। ये कर्मकांड में देवताओं की ही पूजा की जाती है, देवताओं के नाम से आहुतियाँ डाली जाती हैं, और आप समझिए कि वो स्वतंत्र नहीं है, है ना। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, इसमें हम क्या मानते हैं कि भगवान ही जो है मतलब शरीर हैं भगवान, और भगवान के शरीर में सब देवता हैं, है? तो जैसे पेट में आप भोजन डालते हैं तो पूरे शरीर के सब अंगों को भोजन मिलता है, है ना। उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से सब देवताओं की अपने आप पूजा होती है, देवताओं की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर ये है कि अगर आपके अंदर कुछ और कामनाएं पैदा हो गई, और वो भी खतरा है कि दूसरी कामनाएं भी पैदा हो सकती हैं, तो फिर उन देवताओं की भक्ति से आपका खतरा है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अच्छा यही है कि कृष्ण के भक्ति में अगर आपके अंदर भौतिक कामनाएं भी हैं तो भी आपके लिए खतरा नहीं है, कि कृष्ण तो शुद्ध करेंगे, है ना, और आपकी कामनाएं पूरी करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी अपनी इच्छा के अनुसार है, उनका नियंत्रण है। लेकिन देवता लोग आपकी भौतिक कामनाएं पूरी कर देंगे और उसमें आपका फिर पतन होगा, ठीक है ना। अभी तो कई समय तो ज़्यादा हो गया, चलो दो प्रश्न आखिरी, तीन हो गए, अच्छा चलो आप करें।
दक्ष ने कर्मकांड के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, वो भाव रखते हुए भगवान प्रसन्न भी हुए, और जो दूसरे जो होते भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते, भगवान प्रकट होते उनके सामने, तो दोनों के लिए भगवान तो भगवान ही है दोनों के लिए। तो दक्ष प्रजापति के सामने जो भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने मतलब उसके द्वारा उनको शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हुई, लेकिन शुद्ध भक्त होते उनको भगवान को प्रसन्न करने के बाद भी शुद्ध भक्ति वो जारी रख सकते हैं। दक्ष के साथ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो भगवान को प्राप्त किया है, भगवान प्रसन्न भी हुए, तो शुद्ध भक्ति की ओर नहीं मुड़े,
इसका कारण यही है कि उनके अंदर जो है चूंकि भौतिक कामनाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो भगवान ने उनको जो है मतलब पत्नी दी और कहा कि अब इस जो है सहवास के द्वारा जो है आप संतान उत्पन्न करिए और इस तरह से आप मेरी पूजा भी करते रहिए। तो भगवान ने दक्ष को, हाँ लेकिन ये है तो शुद्धिकरण का तो ये रास्ता है ही है। अब शुद्धिकरण में फिर यही है कि कुछ दुर्घटना हो जाती है कि फिर वैष्णव का अपराध हो जाता है, तो वो भी खतरा तो बना हुआ है। क्योंकि अगर हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे हमेशा अपनी सेवा में रखिए, मैं हमेशा आपका स्मरण करूँ, मैं हमेशा आपका चिंतन करूँ, तब जो है आपकी सुरक्षा है। तो भगवान आ जाए आपके सामने तो भी अगर आप जो है मतलब ये अगर नहीं मांगते हैं कि मुझे हमेशा अपनी सेवा में लगा के रखो, तो फिर जो है आपके लिए खतरा है। बहुत प्रश्न रहे। हाँ जी, दक्षों की संतान में हाँ बहुत बड़ा सौभाग्य, दक्ष का बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि 10,000 पुत्र हुए, नारद जी ने उनको शुद्ध भक्त बना दिया, लेकिन उन्होंने फिर नारद जी का अपराध किया। 60 कन्याएं, हाँ उनकी 60 कन्याएं, उन्होंने भी भगवान के अवतार हुए, तो सौभाग्य तो है दक्ष का। हाँ तो इसलिए मतलब 14 पीढ़ियों उद्धार होता है इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनको जो है अवसर मिलता है भक्त बनने का, अवसर मिलता है भक्त बनने का, और भक्त जो है अगर वो अवसर का लाभ उठाए तो लाभ उठा सकता है। 14 पीढ़ियों का उद्धार होने का मतलब ये है कि उनको अवसर मिलता है ना। तो भक्त बनने का अवसर तो मेरा दक्ष को, तो कोई मतलब इसमें कमी नहीं है, दक्ष को जो है बहुत अवसर है भक्त बनने का, है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है दक्ष को जो है, दक्षी स्थिति बहुत सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग प्रश्न आपस में प्रश्न कर लेना, फिर मुझसे फोन पर पूछ लेना, ठीक है। एक चलो आप बोलो। हाँ सबसे उत्तम, सबसे उत्तम बताओ, कौन कौन बताएगा? ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड में सबसे उत्तम कहाँ है? उपासना, भक्ति। नहीं ज्ञान समझो उसको, ज्ञान का मतलब ये है, उसमें ज्ञान का मतलब वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान का कुछ हिस्सा है कि आप मुक्त होना चाहते हैं, नहीं उसके ऊपर आप जो है वो भगवान आपके जो है स्वामी हैं और आप भगवान के सेवक हैं, ये ज्ञान नहीं है उसमें, तो ये ज्ञान अधूरा है। आप समझे ना, ज्ञान कांड में एक प्रकार का तो ज्ञान है कि भाई हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति के बाद भी कुछ कार्य हैं आपके, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए इसमें अज्ञान भी है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वो तो उपासना कांड में है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम उनके नित्य दास हैं, तो उसमें जो है मतलब पूरी मुक्ति है ना, असली मुक्ति कृष्ण की सेवा में है, तो वो कोई व्यक्ति ना समझे है ना, तो वो उसका ज्ञान अधूरा है। ठीक है ना, है धर्मराज, धर्मराज तो महाभागवत हैं, 12 महाभागवतों में से एक है धर्मराज, है धर्मराज नहीं दक्ष। युधिष्ठिर, हाँ नहीं वो तो जो है ना एक लीला है, वो कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। भक्त लोग जो है ये सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी तो हमेशा यही भावना होती है कृष्ण प्रसन्न हो किस तरह से। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा कुछ सोचना है ये धन्यवाद। आप
उत्तरार्ध
सातवीं किताब है क्रम से श्री भगवान ने कहा।